श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मन पसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जिसे पौलुस ने लिखा है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि इस बूढ़ी देह को कब्र में रखा जाएगा जहाँ वह सोएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, और आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच में आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो सदैव हमसे प्रेम करते हैं। आज हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी वचन के द्वारा से सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और हर एक प्रकार की बुराई से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आप रक्षा करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि अपने वचन से हम सबसे बातचीत करें। उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, तनाव और किसी प्रकार के दबाव में हैं, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि बूढ़ी देह को कब्र में रखा जाएगा जहां वह सोएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। ये जो शरीर है हमारा इस संसार में रह जाएगा, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पौलुस लिखता है, अतः हम सदा ढाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस समय हम इस देह में अभ्यस्त हैं, इसमें हमारा वास है। मनुष्य हमें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम इसमें छिपे हुए हैं। जब मैं सभाओं में और आराधनालयों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ तब लोग आकर कहते हैं, रेडियो पर तो हमने आपकी आवाज सुनी है परंतु आपको देखने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। मैं कहना तो चाहता हूँ कि आपने वास्तव में मुझे नहीं देखा है। आप जो देखते हैं वह एक सिर है और कपड़ों के बाहर निकले 2 हाथ हैं। मैं तो इस देह के भीतर रहता हूँ। मेरा यह शरीर अच्छी देख रेख में नहीं है और मैं जब तक इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा इसी देह में रहूंगा। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में, जहां पर पौलुस कहता है, इसलिए हम ढाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मैं इससे अधिक मनोहर बात दूसरी ओर नहीं पाता हूँ और दूसरी नहीं जानता हूँ। यदि आप मेरे दफन में आए तो यह न कहना कि मैं कैसा स्वाभाविक दिखता हूँ। सच तो यह है कि मेरे मित्रों कि मैं वहाँ नहीं होऊंगा, वह तो मेरा डेरा होगा जिसे मैं पहले ही छोड़ चुका होऊंगा। वह मेरा पुराना घर है जो जमीन में सोएगा। मैं तो प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा और वह देह पुनरुत्थान के समय उठ खड़ी होगी। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व पुनरुत्थान के विषय में विवाद हो रहा था कि वह आत्मिक है। मुक्त विचारक तो आज भी उसे आत्मिक ही कहते हैं, वे शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय के एक विद्वान ने पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय पर अपना विचार व्यक्त किया। पद 14 में लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। उनके विचार में आत्मिक देह पर विशेष बल था। अंत में उन्होंने कहा, मित्रों आप देख सकते हैं कि पुनरुत्थान आत्मिक है, क्योंकि लिखा है कि पुनरुत्थान आत्मिक है। मुक्त विचारकों ने बड़ी प्रशंसा की और किसी ने तो उसके प्रकाशन का प्रस्ताव भी रखा। वहां एक रूढ़िवादी यूनानी विद्वान भी था। उसके खड़े होते ही मुक्त विचारक कुछ परेशान दिखाई देने लगे, क्योंकि वह बड़े ही जटिल प्रश्न पूछते थे। उन्होंने कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले वाला वक्ता खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, श्रीमान जी, संज्ञा अधिक प्रभावी है या विशेषण? वह उनकी बात समझ गया था और उत्तर देना नहीं चाहता था, परंतु विवश होकर उसने कहा, निश्चय ही संज्ञा अधिक प्रभावी है। तो श्रीमान जी, आपने संज्ञा की अपेक्षा अपने विचार विशेषण पर व्यक्त किए हैं, देह की अपेक्षा आत्मिक पर। पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाली देह है जो स्वाभाविक से आत्मिक हो जाती है, परंतु है तो वह देह ही। अतः उन्होंने उसके प्रकाशन का विचार त्याग दिया। व्याकरण का छोटा सा अभ्यास और एक महान विवाद का अंत। मेरे मित्रों, दानियल भी मृत्यु को सोना कहता है। दानियल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। मिट्टी देह है, मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में उस चौथी बात को देखें, जिसे हमने पिछले अध्ययन में 3 बातों को देखा था, उसके क्रम में हम चौथी बात देखेंगे। आरंभिक विश्वासियों ने अपने प्रिय जनों के दफन के लिए कब्रिस्तान को बहुत ही अच्छा नाम दिया था, काइमिट्रियान अर्थात विश्रामालय, सोने का स्थान। उस युग में होटलों के लिए भी यही शब्द काम में लिया जाता था। वहां यात्री रात में सोने के लिए रुकते थे, अगले दिन वे अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। क्या आप अपने किसी परिजन के यात्रा पर जाने के लिए रोते हैं? जी नहीं, आप उसके साथ आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार विश्वासियों की देह एक सराय में विश्राम करती है और प्रभु यीशु के आगमन पर पुनः उठ खड़ी होगी। इसी बात को पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसियाओं को बताता है। अब हम पद 13 पर पुनः विचार करें, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अन्य जातियों को आशा नहीं थी, अतः उनके लिए मृत्यु एक भयानक बात थी। उनके एक शिलालेख में व्यक्त है, मरणोपरांत जीवन नहीं और कब्र के बाद पुनर्मिलन नहीं। यूनानी कवि थियोक्रिस्ट ने लिखा, आशा जीवतों में होती है, मृतक आशा से रहित होते हैं। यह प्राचीन संसार का विश्वास था। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं निराशावाद और दुखद। विश्वासियों को अन्य जाति की नाई दुख नहीं मनाना है। मैंने अनेकों दफन देखे हैं और मृतकों के परिजनों के शोक करने को देखकर मैं कह सकता हूं कि वे विश्वासी हैं या नहीं। विश्वासी भी रोते हैं और रोने में कोई बुराई नहीं है। पौलुस नहीं कहता है कि विश्वासी दुख न मनाए। उसके कहने का अर्थ है कि हम उनके समान विलाप न करें जिन्हें भविष्य की आशा नहीं है। एक विश्वासी अपने प्रियजन के मृत्यु पर दुखी तो होता है, परंतु उसे आशा है कि वे एक दिन फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की निकटता में होंगे। यही एक अंतर अन्य जातियों के बीच और विश्वासियों के बीच में होता है कि अन्य जाति अपने प्रियजन के मरने परांत बहुत दुख मनाते हैं, शोक करते हैं, परंतु विश्वासी परमेश्वर के पास प्रियजन के चले जाने से आनंदित होते हैं और उन्हें आशा है कि एक दिन वे भी परमेश्वर के पास अपने प्रियों से फिर मिलेंगे। हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वे वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ध्यान दें। पौलुस कहता है यीशु मरा और जी भी उठा। यीशु के लिए वह नहीं कहता है सो गया, और वह सच में मरा था। यह कैसा सत्य कथन है। धर्म शास्त्र में 3 प्रकार की मृत्यु का वर्णन है। शारीरिक मृत्यु, जिसमें आत्मा शरीर को त्याग देती है, इसी को सामान्यतः मृत्यु कहा जाता है। आदम पतन के बाद 930 वर्ष नहीं मरा था। दूसरी है आत्मिक मृत्यु। पौलुस कहता है सांसारिकता की मानसिकता मृत्यु है, अर्थात परमेश्वर से वियोग, परमेश्वर से अलग होना। अदन की वाटिका में यही हुआ था। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन आदम और हव्वा वर्जित फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे, परंतु मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। आदम परमेश्वर से छिप रहा था। जब वह वाटिका में आया तो आदम और हव्वा परमेश्वर से छिपने लगे। अब वे एक दूसरे से अलग हो गए थे। जी हां, यह उसकी आत्मिक मृत्यु थी। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था। इफिसियों के पत्र 2:1 में पौलुस इसी मृत्यु की चर्चा करता है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। एक बार एक न्यायाधीश प्रचार करता हुआ यात्रा कर रहा था। उसका प्रचार का विषय था आज के जीवित मनुष्यों में लाखों लोग कभी नहीं मरेंगे। उसके पीछे ही एक पादरी साहब प्रचार यात्रा पर थे। उसका विषय था आज के जीवितों में लाखों मृतक हैं। वे वास्तव में मृतक थे, परंतु आत्मिक रीति से, आत्मिक मृत्यु। अब हम देखते हैं तीसरी मृत्यु। तीसरी मृत्यु है अनंत मृत्यु। यह परमेश्वर से अनंत वियोग, हमेशा के लिए अलग होना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:14 में इसे हम पाते हैं, जहां पर कहा गया है कि यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम 3 मृत्यु को पाते हैं, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। आइए हम आगे पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:15 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार पौलुस उन्हें आश्वासन दिलाता है कि वह जो कह रहा है वह परमेश्वर का वचन है। पौलुस जानता था कि वे मृतकों के बारे में चिंतित थे कि वे कलीसिया के उठाए जाने में उनके साथ नहीं होंगे, परंतु वह उन्हें बताना चाहता था कि मसीह में जो मर गए हैं, जो विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे भी कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे। हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जीवतों से पूर्व मृतक उठाए जाएंगे। तब आगे पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु यीशु स्वयं आएगा, वह स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा। जी हाँ, जब वह पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने आएगा तब वह पृथ्वी के चारों कोनों में स्वर्गदूतों को भेजेगा कि चुने हुओं को एकत्र करे, इसराइली और अन्य जाति दोनों जो राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु कलीसिया के उठाए जाने में स्वर्गदूतों की कोई भी भूमिका नहीं है। स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु के जन्म का समाचार सुनाया था। उन्होंने क्या कहा था? दाऊद का पुत्र नवजात राजा, उसे राजा कहकर घोषणा की गई थी। ज्योतिषियों ने पूछा था कि वे यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है उसे कहां पाएंगे। इसके विपरीत पेंतिकोस्त के दिन जब कलीसिया की स्थापना हुई तब भी वहां स्वर्गदूतों ने कुछ नहीं किया था। पवित्र आत्मा स्वयं स्वर्ग से उतरा था। कलीसिया के उठाए जाने के दिन प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस दिन वहां स्वर्गदूत नहीं होंगे। स्वर्गदूत इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं, कलीसिया के साथ नहीं। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि वह ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा। यह आज्ञा की ललकार है, जैसे उसने लाजर की कब्र के बाहर पुकार लगाई थी, लाजर बाहर निकल आ। जी हाँ, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द, क्या यह स्वर्गदूत कलीसिया के उठाए जाने के संबंध में नहीं है? जी नहीं, यह प्रभु की ही आवाज है जो प्रधान स्वर्गदूत की सी सुनाई पड़ती है। यह उसकी आवाज को गुणकारिता, वैभव और अधिकार में रखता है। परमेश्वर की तुरही, क्या तब तुरही फूंकी जाएगी? जी नहीं, उसकी आवाज ही ऐसी दबंग होगी। क्या हम इसके विषय आश्वस्त हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में प्रेरित यूहन्ना पत्मोस द्वीप में था, जहां उसने लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा कि वह कौन है। वह महिमामय प्रभु यीशु था, जिसकी वाणी तुरही की सी थी। अतः यह तो सोचना छोड़ दें कि जिब्राइल तुरही बजाएगा। उसके पास तो तुरही भी नहीं है। यदि होती तो भी उसे तुरही फूंकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु यीशु को जिब्राइल की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। क्या प्रभु यीशु ने लाजर को जिलाते समय जिब्राइल की सहायता मांगी थी? क्या उसने जिब्राइल को बुलाया था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु लाजर की कब्र पर खड़ा जिब्राइल को पुकार रहा है, जिब्राइल क्या तू आकर मेरी सहायता करेगा कि इसे कब्र से बाहर बुलाऊं? यह कैसी महान मूर्खता की बात है। प्रभु यीशु को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब वह अपनी कलीसिया को पुकारेगा तब उनकी देह कब्रों से निकल आएंगी। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ध्यान दीजिए, उठा लिए जाएंगे। फिर वही शब्द, झपट लेना या झपट कर उठा लेना, परिवहन करना आदि। यह काम यथा क्रम होगा। पहले मृतक जी उठेंगे, स्तेफनोस जी उठेगा जो पहला शहीद है, और संभवतः वह जुलूस को लेकर चलेगा क्योंकि वही सबसे पहला मसीही शहीद था। इसके पश्चात प्रेरित गण होंगे और यीशु के लिए जान देने वाले असंख्य लोग होंगे। अंत में हम यदि जीवित रहें तो हम सबके अंत में होंगे। अधिकांश कलीसिया तो मृत्यु के द्वार से प्रवेश कर चुकी है। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या वह कहता है? इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को डराया करो। कदापि नहीं। बाइबल में लिखा है कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसका अर्थ, मात्र सामान्य अर्थों में शांति ही न देना वरन एक दूसरे की अगुवाई करना तथा प्रोत्साहित करना और इन बातों की चर्चा करना। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु अपनों को एक दिन इस संसार से उठा ले जाएगा। यह कैसी महान एवं अद्भुत शांति है। मृतकों की देह भी उठेगी और जीवित विश्वासी भी उनके साथ हवा में उठाए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। हम तदुपरांत उसके साथ राज्य करने प्रभु के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। मेरे मित्रों, यह क्या ही असीम शांति का समय होगा कि हम प्रभु के राज्य में होंगे। वहां पर कोई लड़ाई झगड़े और कोई चिंता की बात नहीं होगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम बात यह है कि हम आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कर लें। यदि हम विश्वास करते हैं तो निश्चय ही जाने कि हमारे मरने के बाद हम जी उठेंगे और प्रभु के साथ सदैव के लिए राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु आने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपने जीवन में इस बात की आशा रखते हैं? आज का वचन हमें बताता है कि विश्वासी जी उठेंगे। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को जांचें। वचन जो परमेश्वर का है सत्य है, झूठा नहीं है। इसलिए हम इसे हल्के में ना लें, परंतु इसे स्वीकार करें और परमेश्वर का वचन जानकर इसकी आज्ञाओं का पालन करें और निश्चय जानें कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य।